जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीराबन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा हरे कृष्णा। तो आप सब वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना है कि आप कृपा करें, आज्ञा दें, जिससे कि हम कुछ बोल पाए श्रीमद् भागवतम के विषय में। तो आज एक हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक उत्सव है बंगाल के अंदर, जिसको कहते हैं जहनु सप्तमी। क्या कहते हैं? तो आज हम रेगुलर भागवतम क्लास का श्लोक नहीं ले रहे हैं, आज हम लोग नवम स्कंद से पढ़ेंगे थोड़ा सा। वैसे तो क्रमानुगत देखे तो अष्टम स्कंद चल रहा है, जिसमें समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन हम समुद्र मंथन को नहीं ले रहे, हम लोग उससे एक स्कंद और आगे कुछ श्लोकों को लेंगे। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने जनु मुनि का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बस इतने लोगों ने। ओके। देखिए, गंगा मैया का एक नाम है जाह्नवी, ठीक है? जाह्नवी नाम है गंगा मैया का। तो आज पूरी कथा गंगा मैया के ऊपर ही होगी, क्योंकि आज गंगा मैया का नाम क्या हुआ? जाह्नवी, ठीक है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नवम स्कंद के पंद्रहवें अध्याय के दो और तीन श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। श्रुतायोर वसुमान पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतुञ्जयः रयस्य सुत एकस्य जयस्य तनयोमितः भीमस्तु विजयस्यास्त कांचनो होत्रकस्ततः तस्स जनहु सुतो गंगाम गंडूसी कृत यो अपविता। प्रभु जी धराइए, प्रभु जी एक माता जी एक प्रभु जी बस। श्रुतो आयोर वसुमान पुत्रः सजन हो सुतो गंगा गंडू सीकृत यो पिबा। एक माता जी सुतो आयोर वसुमान पुत्रः सुतन्यः हरे कृष्णा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में राज ऋषियों की कथा का वर्णन करते हैं और वो प्रथम अध्यायों में नवम स्कंद के प्रथम अध्यायों में सूर्यवंश के राजा ऋषियों का वर्णन करते हैं। राज ऋषि जो सूर्यवंश में हुए जैसे इच्छाकु महाराज, मानदाता महाराज इत्यादि, उनका वर्णन किए और उसके बाद भगवान रामचंद्र की लीलाओं तक उन्होंने वर्णन किया और फिर उनके बाद चंद्रवंश। ये दो वंश बहुत फेमस हैं वंशावली में। पहले सूर्य वंश जो भगवान सूर्य से शुरुआत हुई जिसकी, और दूसरा वंश कौन सा है? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के राजाओं को जब वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी तो सबसे पहले वो कहते हैं भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्त्या, कि जो कोई व्यक्ति इन चंद्रवंश के राजाओं के विषय में सुनता है, राजाओं के विषय में उनके नामों को उच्चारण करता है, उनकी कीर्ति गाता है, पुण्य कीर्ति है, वो पुण्य कीर्ति को प्राप्त करता है सुनने वाला व्यक्ति। सोचिए तो ये इतने महान राजा लोग हैं। तो जनु मुनि, जैसे आज जनु सप्तमी है, आज उन्होंने गंगा जी को पी लिया था और गंगा जी का नाम पड़ गया जाह्नवी। तो ये जो जनु मुनि है ये इसी चंद्रवंश के राजाओं में से एक राजा थे जो सब कुछ छोड़ के भगवान के भक्त बन गए और नवद्वीप धाम में जाके आश्रय प्राप्त किए और गंगा जी को एक घूंट में पी गए। तो इसलिए इस श्लोक में आ रहा है कि कैसे चंद्रवंश की स्थापना, चंद्रवंश के इतिहास में सर्वप्रथम अगर देखें तो भगवान विष्णु गर्भ साई विष्णु, उनके गर्भ से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा अत्रि मुनि का जन्म हुआ, अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा हुए, सोम हुए, और चंद्रमा के पुत्र बुद्धदेव हुए, बुद्धदेव के पुत्र हुए पूर्वा महाराज, और पूर्वा महाराज के छह पुत्र हुए। पूर्वा महाराज की पत्नी कौन हुई? स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी, और उर्वशी के गर्भ से पूर्वा महाराज ने छह पुत्र को जन्म दिया। उनमें से सबसे प्रथम पुत्र थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ये छह पुत्र पूर्व महाराज के हुए और इनमें से जो सबसे छोटे पुत्र हैं विजय, विजय के पुत्र हुए भीम, भीम के पुत्र हुए कांचन, कांचन के पुत्र हुए होत्रक, और होत्रक के पुत्र हुए जनु। तो सुखदेव गोस्वामी लास्ट लाइन में बोल रहे हैं तस्य जनु, ये वही जनु है, तस्य जनु सुतो गंगा गंडूसी कृत योपिबत, ये जो पुत्र हैं होत्रक के, ये वही जनु हैं जिन्होंने एक घूंट में गंडूसी कृत अपवित, एक ही घूंट में गंगा जी को पी गए, ये वही जनु हैं। तो श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। तो एक ही लाइन में सुखदेव गोस्वामी ने पूरी मायापुर की कथा को कह दिया कि ये वही जनु हैं। तो इसलिए हम जाने भी, क्योंकि ये जो गंगा मैया हैं इनका बहुत ज्यादा मतलब महत्व है, उनकी कृपा का, उनकी सेवा का और उनकी भक्ति का, भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है। तो हमें आज स्पेशली हम गंगा मैया के विषय में वर्णन करेंगे और गंगा मैया के विषय में वर्णन करते करते हम नवद्वीप में प्रवेश करेंगे। नवद्वीप में जाने के बाद थोड़ा सा ब्रज भूमि में भी हम लोग आएंगे। तो इसलिए आप लोग को ये आज का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि आज बहुत अलग अलग प्रकार की चीजों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम समझेंगे तो हमको बहुत लाभ मिल सकता है। तो जब हम प्राणों का अध्ययन करते हैं तो स्पेशली हम गंगा मैया की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। पहले गंगा मैया कैसे उत्पन्न हुई, तो माता गंगा की जो उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम वो गोलोक वृंदावन में हुई। ब्रह्म व्यवर्त प्राण के प्रकृति खंड में इसका वर्णन है। मूल प्रकृति श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी से लक्ष्मी देवी प्रकट होती है, सरस्वती और दुर्गा देवी और सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो ये पांचों को मूल प्रकृति कहा जाता है, जिसमें सर्व प्रमुख कौन है, श्रीमती राधा रानी। प्रकृति का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण कृति या प्रथम कृति, जिसके द्वारा सृष्टि चलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकृति, या सामान्य भाषा में स्त्री, स्त्री रूपा। तो प्रकृति का मतलब ये होता है, प्रकृति मतलब तो ये पूरा संसार, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है चाहे भौतिक जगत, ये सब प्रकृति के द्वारा ही चलता है। ये भौतिक जगत दुर्गा देवी के द्वारा चलता है, जिसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं भगवान की, और आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा, जिसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं। तो ये मूल प्रकृति श्रीमती राधा रानी है। तो वर्णन आता है कि किस तरह से राधा रानी से सरस्वती प्रकट हुई और सरस्वती भगवान हरि की प्रिया बनी, भगवान श्री विष्णु की, और भगवान कृष्ण से विष्णु जी प्रकट हुए नारायण। तो भगवान ने कहा कि आप सरस्वती को धारण करो, भगवान सरस्वती धारण किए, फिर लक्ष्मी को भी धारण किया विष्णु जी ने, विष्णु जी लक्ष्मी को भी धारण करके वैकुंठ लोक में निवास करने लगे। विष्णु की कितनी पत्नियां हुई, दो पत्नियां हुई, पहली कौन सी हुई, सरस्वती, दूसरी लक्ष्मी। ये मैं पुराण से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये साइड एक बार क्या हुआ, भगवान शिव गोलोक वृंदावन में एक गीत गाए, बहुत सुंदर गीत गाए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और उस गीत को सुन के भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि कृष्ण का पूरा शरीर एक द्रव में प्रवर्तित हो गया, ब्रह्म द्रव, मतलब ब्रह्म द्रव बन गया, मतलब पूरा शरीर जल के रूप में, और पूरा गोलोक वृंदावन वो जल से भर गया। अब सारे लोग बहुत परेशानी में आ गए कि भगवान गए कहां, पूरा जली जल दिख रहा है चारों तरफ। तो अब सबने प्रार्थना किया, भगवान शिव ने भी प्रार्थना किया, प्रभु क्या मेरे से कोई गलती हो गया कि आप कहां गायब हो गए, आप पुनः प्रकट होइए और हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि देखो शिव जी, आप है ना तंत्र शास्त्र की रचना करोगे तभी मैं प्रकट होऊंगा। एक तंत्र शास्त्र है जिसमें कैसे भगवान की भक्ति के सूक्ष्म सूक्ष्म नियमों का वर्णन किया है शिव जी ने। तो शिव जी बोलते ठीक है मैं करूंगा। तो फिर से भगवान प्रकट हुए, है ना। तो वो जो भ्रम द्रव है, शास्त्र बोलता है कि वही गंगा जी है, एक वर्णन आता है। दूसरी ओर वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे गोलोक वृंदावन में, तो उनके चरण कमल से, उनके नक के आगे के भाग से एक स्त्री ने जन्म लिया, एक स्त्री प्रकट हुई, और वो स्त्री बहुत सुंदर थी। और वो स्त्री ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण को देख के आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सुंदर पुरुष, और वो देखने लगी, भगवान को अलग अलग प्रकार से निहारने लगी। जब निहारने लगी तो उसी समय श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ, और जब श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ तो क्या हुआ तो ये जो लड़की जो प्रकट हुई थी, ये थोड़ा सा भयभीत हो गई राधा रानी के स्वरूप को देख के, क्योंकि राधा रानी थोड़ी सी क्रोधित है, क्योंकि जब भी वो किसी स्त्री को देखती है गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ में, तो थोड़ा उनको रोष आता है, क्रोध आता है। ये गोलोक वृंदावन में, यहाँ नहीं, गोलोक वृंदावन में। जैसे कि उन्होंने बिरजा को देखा था तो बिरजा क्या हो गई, जल बन गई। ऐसे कई सारे गोपियों का वर्णन आया है शास्त्र में, जिन जिनको राधारण ने क्रोध की दृष्टि से देखा वो कुछ ना कुछ बन गए, क्षमा हुई, प्रभा हुई, कई सारे नाम है, वो सारा सुनाने का यहाँ पे समय नहीं है। तो ऐसा हुआ, तो ये जो लड़की थी ये आश्चर्यचकित हो गई राधा रानी की सुंदरता को देख के, और राधा रानी को मन ही मन स्तुति करने लगी कि इतने सुंदर पुरुष और इतनी सुंदर स्त्री मैं तो पहली बार देखे, मन ही मन वो स्तुति करने लगी। तो फिर राधा रानी मुस्कुराते हुए कृष्ण को बोलते हैं कि आप ये कौन स्त्री है ये, हाँ, और आप इस स्त्री को कैसे अपने समक्ष बैठा सकते, कैसे अपने समक्ष खड़ा कर सकते हो। और तो धीरे धीरे वो जो स्त्री थी वो डर गई, वो फिर से कृष्ण के चरण में समा गई, फिर से समा, क्योंकि उसको डर लग गया। अब जैसे ही कृष्ण के चरण में समा गई तब क्या हुआ, सारे बैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन में जो भी जलता वो सब सूख गया, सब कुछ खत्म, जल का एक नामो निशान नहीं है, ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, सब अब सब चिंता मग्न हो गए। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर जी सब लोग आए, बोला प्रभु ये क्या लीला है, जल की एक बूंद तक नहीं है, कैसे करें हम, कैसे सृष्टि का ये पालन होगा। अब भगवान कृष्ण बोले देखिए राधा रानी ने रोष प्रकट किया, वो गंगा देवी वो प्रकट हुई थी वो फिर से अप्रकट हो गई, वो साथ साथ सारे जल को भी सींच के ले गई। ओहो ये तो बहुत टेंशन हो गया सबको, अब क्या करें। तो फिर सब देवतागण राधा रानी के समक्ष आए, राधा रानी को प्रार्थना किया, हे राधे आप तो करुणामयी हो, कृपामयी हो, दयामयी हो, है ना, आप फिर से इस ब्रह्मदेव को फिर से प्रकट करा दीजिए। तो राधा रानी कुछ बोली नहीं, तब ब्रह्मा जी बोले कि हाँ वो जो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सारा वृत्तांत बताया था कि क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी बोले देखिए वो जो लड़की प्रकट हुई थी ना वो एक्चुअली आपकी पुत्री के समान है। क्या है आपकी पुत्री, क्योंकि कृष्ण और आपके संयोग से वो प्रकट हुई है तो वो आपकी पुत्री के समान है। हाँ तो मैं क्या करूंगा, उसको लेके मैं बैकुंठ जगत में जाऊंगा और उसको किसको समर्पित कर दूंगा, भगवान श्री हरि को समर्पित कर दूंगा, तो वो उनकी सेवा करेंगे, उनकी पत्नी बन जाएंगे। तो राधा रानी को हंसी आ गई, जब राधा रानी को हंसी आ गई तो कृष्ण भी मुस्करा गए। तो फिर से गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी प्रकट होके ब्रह्मा जी ने गंगा जी को बताया कि आप राधा व्रत का सेवन कीजिए, राधा रानी का जो व्रत है वो कीजिए, जिससे कि आपको अभय प्रदान मिलेगा राधा रानी के द्वारा, क्योंकि गोलोक वृंदावन में राधा रानी की प्रमुखता है, बाकी सब नतमस्तक। तो ऐसे तो फिर ब्रह्मा जी लेके आ गए उनको श्री हरि के पास में और शरीर को समर्पित किया और श्री हरि की पत्नी के रूप में। तो अभी कितनी पत्नियां हो गई, तीन हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी देवी और गंगा देवी। अब ये जो लक्ष्मी देवी हैं ये बहुत शांत हैं, हमेशा शांत रहते हैं और पूरे तन मन धन से भगवान विष्णु की सेवा किए करते थे। तो सरस्वती देवी को थोड़ा सा वो होता था कि यार ये ज्यादा सेवा करती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो एक दिन वो भगवान विष्णु को थोड़ा बोल रही थी कि ये देखो ये लक्ष्मी क्या है, सब सेवा यही करती रहेंगी, हम क्या है, हम किस लिए हैं, ऐसे करके। तो गंगा देवी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, गंगा देवी ने बोला अरे क्यों लक्ष्मी को बुरा भला बोलती हो, क्या प्रॉब्लम है आपका। तो इससे सरस्वती को क्रोध आ गया और सरस्वती ने गंगा देवी को श्राप दे दिया, तुम लक्ष्मी का पक्ष लेती हो, तुम्हें पता है सरस्वती के बिना लक्ष्मी का कोई काम नहीं होता, हाँ इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ, तुम जाओ भौतिक जगत में पर पापियों के पाप का नाश करो। इनको बड़ा क्रोध आया गंगा जी को, अच्छा हमें श्राप दे दिया, ओहो हम भी श्राप देते हैं, तुम भी बनो नदी जाके, उन्होंने भी श्राप दे दिया। अब लक्ष्मी जी टेंशन में हो गए, अरे ये क्या एक दूसरे को काउंटर कर्ष दे रहे हैं। तो फिर भगवान श्री हरि आए, प्रकट हुए और भगवान श्री हरि बोले कि देखो अभी जो आपस में आप लोग ने श्राप दिए है ना, अच्छी बात है, अब श्राप का पालन भी होना चाहिए। तो गंगा जी आप जाओगे नीचे भौतिक जगत में। गंगा जी रोने लगी, प्रभु मैं आपके चरण कमलों को छोड़ के कहाँ जाऊं, मैं नहीं जा सकती। और सरस्वती बोले आप भी जाओगे नीचे, है ना। और सरस्वती ने लक्ष्मी देवी को भी श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ और नदी बन जाओ। तो भगवान विष्णु बोले कि देखो लक्ष्मी देवी आपको भी जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आपको भी जाना पड़ेगा, तो क्या करें। तो तीनों रोने लगे जोर जोर से, प्रभु हम तो आपकी प्राण प्रिया हैं, हम तो नहीं रह सकते आपके बगैर, आप हमें कहाँ मिलोगे। तो सरस्वती को बोलते हैं कि तुम है ना ब्रह्मा जी के घर पे जाओ, वहीं रहना, ठीक है, कलयुग जब तक रहेगा तब तक उधर ही रहना आप, ऐसे वर्णन आता है। और गंगा जी को बोला कि आपको तो भाई नीचे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ही द्वारा, गंगा का मतलब ही होता है पवित्र करने वाली, गंगा जो शब्द है, यदि कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान नहीं कर पाया है, लेकिन स्नान करते समय गंगा गंगा बोलता है तो वही लाभ मिलता है उसको, गंगा जल में स्नान, इतना ये नाम का प्रभाव है गंगा जी के नाम का। तो सोचिए कोई व्यक्ति जिसको गंगा का तट मिल गया है स्नान करने के लिए, या जिसको नवदीप धाम मिल गया है, वो कितना भाग्यशाली होगा, समझिए आप। तो गंगा जी की इतनी महत्वता है। तो गंगा जी, फिर भगवान ने बोला कि आप शिव जी के पास जाओ, क्योंकि शिव जी मेरे अंश स्वरूप है, और शिव जी के पास जाके आप समुद्र में मिल जाओगे, समुद्र भी मेरे अंश स्वरूप है, मतलब मैं ही हूं समुद्र के रूप में और शिव जी भी मैं ही हूं गुण अवतार के रूप में। तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर गंगा जी गए, गंगा जी गए सबसे पहले भौतिक जगत में आए गंगा मैया। तो आप लोग को पता होगा कि पहले वो ऊपर ही बहते थे, नीचे नहीं आते थे। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक में अष्टम आठवें स्कंद के 21वें अध्याय के चौथे श्लोक की टीका में सनात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये तीन जल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भगवान वामन देव ने अपना दूसरा पग उठाया तो उससे क्या हुआ, ये ब्रह्मांड का कवर फट गया था, ओके। और जब भगवान का, जैसे मैंने बताया पहले कि भगवान जब द्रवित हो गए थे, उनका पूरा शरीर जल बन गया था, तो उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था, ओके। और अन्यत्र कहा गया है एक जगह पे कि ये जो नारायण भगवान है, स्वयं भगवान, ये भी स्वयं गंगा जी हैं। तो विष्णु ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो तीनों हैं, तीनों जल एक मिल जाता है, इसलिए इस जल में तीनों लोकों को पवित्र करने की क्षमता है। पहला जल क्या, जो ब्रह्मांड का कवर फट गया था तो आध्यात्मिक जगत से कुछ बूंदे आ गई, ओके। दूसरा जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में था, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण का अभिषेक किया, ठीक है। और तीसरे तो स्वयं भगवान नारायण गंगा जल के रूप में रहते ही हैं। तो ये तीनों जल एक साथ जब मिल जाता है तब ये गंगा बन जाता है, और इस जल में तीनों लोगों को कल्याण करने की शक्ति रहती है। समझ में, ये थोड़ा नई बात है, पर ये आचार्य टीका में लिखे हैं इसको। तो इस तरह से गंगा मैया आए भौतिक जगत में। तो आप लोग को ये प्रसिद्ध कथा पता है नवम स्कंद की, कि किस तरह से गंगा मैया ने सगर मुनि के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। सगर मुनि ये हरिश्चंद्र महाराज के वंश में प्रकट हुए, इनके पिता का नाम बाहुक था, और इनके पिता जब शरीर छोड़ दिए तो इनकी जो माँ थी उस समय गर्भवती थी, लेकिन वो सती होना चाहती थी, तो औरव मुनि के द्वारा इनको रोका गया, बोला आप गर्भवती हो, आप शरीर नहीं त्याग सकते। तो इनकी जो राजा की जो दूसरी पत्नियां थी, उन्होंने क्या किया, इनको जहर खिला दिया। तो पुत्र का जन्म हुआ तो जहर के साथ ही प्रकट हुए वो, इसलिए नाम पड़ा सागर, गर मतलब जहर, और सागर मतलब जो जहर के साथ प्रकट हुआ। तो ऐसे सगर महाराज थे जिनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो सगर महाराज ने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, यज्ञ करूंगा, अश्वमेध यज्ञ करूंगा। बहुत सारे यज्ञ किए थे लेकिन इस बार कुछ स्पेशल यज्ञ करना था इनको। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए, और उसमें घोड़ा, आपको पता है अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है जिसको पूरे भारत वर्ष में घुमाया जाता है, और बाद में उसकी अग्नि में आहुति दी जाती है। तो इंद्रदेव को थोड़ा सा टेंशन हो गया, बोले कि अरे अगर ये अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मेरा पद छीन लेंगे, इसलिए मैं कुछ प्लान करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस घोड़े को ही चुरा लेता हूँ, और तो अश्वमेध यज्ञ होगा ही नहीं। तो इंद्र ने क्या किया, घोड़ा चुरा के ले गया, और घोड़ा चुरा के ले गया, और कहाँ पे छोड़ा, जहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था उसके आसपास छोड़ दिया घोड़े को। तो सगर मुनि के जो 60,000 पुत्र थे बहुत क्रोधित हो गए, कौन ले गया घोड़े को ऐसे। तो सगर राजा ने बोला जाओ घोड़े को ढूंढो जाके, किधर गया वो। तो इन सगर के पुत्रों ने क्या किया, पूरी धरती को खोद डाला, भूमंडल को। तो भूमंडल को खोदा और उसमें जो जल भरा उसको कहते हैं सागर, है ना। तो ये उनकी शक्ति का प्रभाव है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक ऋषि का आश्रम है और पीछे घोड़ा घास खा रहा है, चर रहा है या बंधा हुआ है, जो भी है। तो ऋषि को भला बुरा बोलने लगे, इतना बड़ा बोला, बोला अरे ये ऋषि है, ढोंगी है, ये हमारे घोड़े को चुरा लाया। अब भगवान का अपराध के, कपिल मुनि ध्यान में थे, तो वो इतने वो क्रोधित हो गए थे, इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया कि अपराध के चलते उनके ही शरीर से अग्नि निकली और जल के उसमें मर गए 60,000। सोचिए कितने लोग होंगे 60,000, सब की सब थोड़ी देर में ही राख बन गए वहीं की वहीं। तो बाद में फिर सगर मुनि राजा सगर ने असमंजस को, असमंजस के जो पुत्र थे अंशुमान, उनको बोला कि आप जाओ और देखो मेरे पुत्र कहाँ गए, आपके भाई लोग कहाँ गए, देख के आओ, मतलब आपके चाचा लोग किधर गए पता ही नहीं। तो अंशुमान गए, उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा है, तो कपिल मुनि को प्रार्थना किया, प्रणाम किया और सारी बात पूछी कि मेरे जो चाचा लोग थे आए तो थे लेकिन कहाँ गायब हो गए पता नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम अपने उनको ढूंढने आए हो, वो देखो वो जो ये राख का जो ढेर पड़ा है ना, ये सब उनकी अस्थियां है, सब सब जल के भस्म हो गए। वो लोग बोले सब जल के भस्म हो गए। बोले हाँ, इन लोग ने पता नहीं अपने ही अग्नि से वो जल के भस्म हुए, क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध करने से ऐसे ही होता है। तो फिर उन्होंने बोला इनके कल्याण का कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने बोला कि जब तक धरती पे गंगा देवी नहीं प्रकट होंगी, गंगा देवी की धारा से जब तक ये इनकी राख, इनकी जो अस्थियां ये मिक्स नहीं होंगी गंगा देवी के जल में, तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता, तब तक ये लोग वैकुंठ नहीं जा सकते। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करो, गंगा जी को लाना है। तो अंशुमान ने तपस्या किया, कितना तपस्या किया, बहुत तपस्या, इतना तपस्या किया कि उनका शरीर पूरा हो गया पर गंगा जी नहीं आई। इसके बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी प्रयास किया कि मैं अपने पूर्वजों को कल्याण करने के लिए तपस्या करूंगा। तो उन्होंने भी तपस्या किया, उन्होंने कितनी तपस्या किया, उन्होंने भी बहुत तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि उनका भी शरीर पूरा हो गया, वो भी शरीर छोड़ दिए पर गंगा जी धरती पे नहीं आई। इसके बाद जो दिलीप महाराज के पुत्र थे उनका नाम है भागीरथ, भागीरथ जी तपस्या किए। और भागीरथ किनकी तपस्या किए, तो शास्त्र बोलते हैं, प्राण बोलते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए। ये भागवत में वर्णन नहीं, अन्य प्राणों में वर्णन है। भागवत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और भगवान श्री कृष्ण को अपनी मनोवांछा बताई कि प्रभु मेरे सारे पूर्वजों का पूरा विनाश हो चुका है, अब आपको पता है सब कुछ, आप कैसे भी करके गंगा जी को आदेश दीजिए कि वो यहाँ पे आए। तो भगवान ने बोला तथास्तु, गंगा देवी आएंगी। तो गंगा देवी प्रकट हुई भागीरथ के सामने और बोलने लगी देखो मैं तो आऊंगी लेकिन मेरा वेग इतना होगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती फट जाएगी, दो टुकड़ों में बट जाएगी, कहां चली जाएगी पता नहीं लगेगा। आप विचार कर लो, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे धारण कर सके। तब भागीरथ जी ने, भगवान ने भागीरथ को बताया था कि शंकर जी उसको धारण करेंगे। तो शंकर जी के पास गए, शंकर जी के पास प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ आप भी गंगा जी को धारण कर सकते, उनका वेग बहुत ज्यादा है। तो गंगा जी को बोला शिव जी ने, अरे आ जाओ कोई चिंता नहीं, आ जाओ हम आपको धारण करेंगे। तो फिर गंगा मैया बोलने लगी देखो शिव जी आप 100% श्योर है ना, मेरा वेग बहुत ज्यादा है ना, अभी ऐसा कोई इस भौतिक जगत में कोई है नहीं जो मुझे धारण कर सके, पर आप देख लो। तो भगवान ने बोला आप आ जाओ मैं धारण करूंगा आपको। तो पूरे प्रचंड वेग के साथ में गंगा जी आई, मतलब ब्रह्मलोक से कैलाश लोक में आई। तो भगवान ने क्या किया, जैसे आए शिव जी ने अपनी जटा में बांध लिया, ठीक है ना, गंगा जी गायब पूरा, कहां गई गंगा जी पता ही समझ आया ना। तो फिर गंगा जी जब पूरी जटा में बांध लिया भगवान ने, तो शिव जी ने क्या किया, एक छोटा सा लठ जो उससे बोलते हैं हम लोग, ऐसे बाल एक ना, एक जटा ऐसे निकाला और उसमें से थोड़ी सी धारा निकली जो हम देख रहे हैं ये थोड़ी सी धारा है, अगर शिव जी ने पूरी जटा खोल दी ना, इसे ये हम साहब गायब ये पूरी पृथ्वी गायब हो जाएगी, इतने बड़े हैं शिव जी। सोचिए शिव जी की महानता सोचिए आप। शिव जी ने छोटा सा जटा ऐसे किया, उसमें से जो पानी निकल रहा है ना वो हिमालय से होते होते यहां तक आ रहा है हमारे पास में, और वो भी इतना भावे चलता है कि आप लोग जब भागीरथी जाते हैं हर की पौड़ी तो कितना ज्यादा वेग होता है, हम लोग डर जाते हैं, इतना वेग में चलती है गंगा मैया। सोचिए वो एक बाल में से जो छोड़ा था ना शिव जी ने, उससे वो पानी निकला, इतना ही है बस, पूरी गंगा मैया तो उनके पास ही है। सोचिए इसलिए उनको गंगाधर बोलते हैं। शिव जी का क्या नाम है, गंगाधर, इसलिए उनका नाम पड़ा गंगाधर, क्योंकि उन्होंने गंगा को क्या किया, धारण कर लिया, है ना। अभी हम आएंगे नवदीप धाम में। तो ये गंगा जी भागीरथ रथ लेके आगे चल रहे थे, गंगा मैया को दिखा रहे थे कि, क्योंकि उनको अपने पूर्वजों के पास ले जाना था गंगा मैया को, तो पूर्वजों के पास ले जाना था। मार्ग में क्या हुआ, नवदीप धाम आ गया। अब नवदीप धाम में महान तपस्वी जो हमने बताया ना, जनु मुनि, जो आज जनु सप्तमी है, ये वहां पे भगवान चेतन महाप्रभु का ध्यान कर रहे हैं और आचमन का मंडलू वगैरह सब होते हैं संध्या वंदन इत्यादि करने के लिए, और गंगा का ऐसा बेग आया कि इनका आचमन का मंडलू गंगा की बेग की हवा से उड़ गया। झनु मुनि ने देखा इतना बेग इस नदी का कि मेरे कमंडल और उसको उड़ा दिया आचमन पात्र को। झनु मुनि ने क्या किया, ऐसे पी गए पूरा गंगा, जितनी गंगा थी सब पी गए, गंगा मैया गायब। भागीरथी देख रहे हैं पीछे क्या हो गया यार, गंगा आई नहीं अभी तक, गंगा मैया गंगा है ही नहीं, गंगा गायब। भागीरथ महाराज बोले यार ही क्या हो गया, बड़े टेंशन में हो गए, बहुत बिलाप करने लगे। तो सारे ऋषि मुनि भागीरथ के पास में आए जो नवदीप धाम में रहते थे कि मैं गंगा मैया को लेके आ रहा था पर गंगा मैया अचानक गायब हो गई। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गंगा मैया को ये पी गए। कौन पी गए, झनु मुनि पी गए। सोचिए तो ये है। तो नवदीप धाम के बारे में वर्णन आता है कि नवदीप जो धाम है वो झनु मुनि का अपना भगवान का धाम है, भगवान का घर है, अपना घर है झनु मुनि का। झनु मुनि वहां पे तपस्या करते हैं। जैसे कि हम नवदीप धाम में जाते हैं तो हम लोग नौ दीपों का दर्शन करते हैं। कितने भक्तों ने नवदीप की परिक्रमा की है, सभी ने की है ऑलमोस्ट। तो ऐसा आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं इनक्लूडिंग कोई भी तीर्थ मान लो, तो उसमें वो लिखते हैं अन्य तीर्थ अपराधी दंडेरे भाजन, नवदीप अपराधे सदाय मार्जन। बोलते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों में अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे अपराध का दंड मिलता है। ठीक है, आगे बोलते हैं अन्य तीर्थे कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। बोलते हैं कि अन्य तीर्थों की बात भी छोड़ दो, इस अगर कोई वृंदावन में भी पाप करता है, वृंदावन में अपराध करता है, उसको निश्चित दंड मिलेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं शास्त्र में। अन्य अन्य तीर्थे कथा राख भाई दूरे, दूर रखो और अन्य तीर्थों की कथा, उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। अरे ब्रजपुरे, यदि वृंदावन में भी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है पाप करता है निश्चित दंड मिलता है उसे। नवदीपे सत सत अपराध करी, अनायास से निताई कृपा जाए तरी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नवदीप में आके करोड़ों पाप भी करता है लेकिन वो केवल निताई गौरांग क्या के पुकारता है, निताई गौर, तो बोलते हैं कि तत्क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कोई अपराध भी नहीं मिलता। सोचिए ये क्या है, नवदीप धाम। तो झनु मुनि उसी नवदीप धाम में तपस्या की है भगवान चेतन, और दिन रात भगवान चेतन महाप्रभु के विषय में सोचते थे कि भगवान का दिव्य शरीर कैसा होगा, मैं कब उनका दर्शन कर पाऊंगा। तब एक दिन भगवान चेतन महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण चेतन महाप्रभु प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। तो भगवान सर्वप्रथम उनको दर्शन दिए किस रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, और कृष्ण के रूप में दर्शन देते देते ही भगवान गौर रूप में प्रकट हो गए। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी, पीताम्बर धारण किया था और गौर रूप धारण करते जैसे ही किया धीरे धीरे भगवान संन्यास रूप में प्रकट हो गए। कमंडलू दंड और मुंडन और पूरा लाल वस्त्र एकदम, झनु मुनि आश्चर्य हो गए ये क्या, और रोने लगे भगवान को देख के बारम्बार। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कई बार झनु मुनि का आलिंगन किया। ये नवदीप धाम की महिमा है। नवदीप धाम में जो भी जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से उसका आलिंगन करते हैं। ये बहुत लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि उस भूमि में जाते ही व्यक्ति हरिनाम बराबर लेता है ना। तो ये नवदीप की महिमा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया झनु मुनि का, और झनु मुनि को आलिंगन करके उन्होंने बोला आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। तीन बार भगवान ने बोला और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ओके, अंतर्धान हो गए। तो जब ये मैंने बीच में कथा इसलिए सुनाई नवदीप धाम की, तो इस बार क्या हुआ कि भागीरथी देख रहे हैं कि झनु मुनि ने पूरी गंगा को पी लिया और वो झनु मुनि के सामने प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु प्लीज गंगा मैया को बाहर निकालिए आप, नहीं तो क्या होगा, मेरे पूर्वजों को उद्धार ही नहीं होगा। तो प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कि कई जगह बोलते हैं कि जंघा से झनु मुनि ने गंगा को प्रकट किया और अन्यत्र लिखते हैं कि कान से भी उन्होंने प्रकट किया गंगा मैया को, तो इसलिए गंगा मैया प्रकट होकर बाद में अपने पिताजी को प्रणाम की। और पिता कौन हो गए, क्योंकि अभी उनसे दोबारा प्रकट हुई है तो उनकी पुत्री हो गई गंगा मैया। तब से सारे नवद्वीप में जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कह के पुकारा, जाह्नवी। माता का नाम क्या पड़ गया, जाह्नवी, ये माता का नाम पड़ गया। चेतन भगवत गीता में ही भगवान बोलते हैं श्रोता नाम अस्मि जाह्नवी, नदियों में मैं कौन हूं, गंगा, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। तो ये जाह्नवी नाम क्यों बार बार आता है, इसलिए आता है क्योंकि जनु मुनि की भक्ति के कारण। आप कई कोई भी स्रोत्र पढ़ोगे कुछ वहां पे जाह्नवी नाम आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसमें जनु मुनि की तपस्या मिक्स है और माता ने भी जनु मुनि को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उनसे आज्ञा ली कि आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भागीरथ के साथ थोड़ा आगे जा सकूं। जनु मुनि ने उनको आज्ञा दिया। क्रम में भीष्म पितामह जो गंगा मैया के पुत्र हैं, भीष्म पितामह किनके पुत्र हैं, गंगा मैया के पुत्र हैं, तो भीष्म पितामह भी आए। भीष्म पितामह का जन्म कहां हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नवद्वीप में। जनु मुनि जनु आश्रम में ही भीष्म पितामह का जन्म हुआ। ये भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धामात में लिखे हैं कि माता गंगा ने जनु मुनि को जन्म कहां, सॉरी भीष्म पितामह जन्म कहां दिया, देवव्रत को नवद्वीप में जन्म दिया। नवद्वीप में जन्म दे के उनसे आज्ञा लेके माता स्वर्ग लोक में चली गई देवव्रत को लेके, और वहां पे शिक्षा दीक्षा के बाद फिर देवव्रत यहाँ पे आए, हस्तिनापुर में आए, और हस्तिनापुर में आके वो अपने पिता के राज सिंहासन को संभाले और बीच बीच में वो जाते थे, कहाँ जाते थे, जनु मुनि के आश्रम अपने नाना जी से मिलने के लिए, नाना जी से मिलने के लिए जाते थे। तो नाना जी क्या करते थे, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण कराते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के विषय में, रूप के विषय में सब कुछ उनको बताते थे। तो भीष्म पितामह जब महाभारत के काल में सर सैया पर लेटे हुए थे, बाण सैया पे सॉरी, तो सारे पांडव उनके पास में आए और पांडव जब पास में आए तो उन्होंने भी नवद्वीप धाम की महिमा का वर्णन किया पांडवों को। एक श्लोक में महाभारत के ये वन प्रभ का जो श्लोक है उसमें वो युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं, सुवर्ण वर्णो हेमांगो बरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत चमय शांतो निष्ठा शांति प्रायणा, कि भगवान कलयुग में कैसा रूप धारण करते हैं, सुनहरा रूप धारण करते हैं और संन्यास लेके वो सारे मायावादियों को चुप कर देते हैं। सारा बताया एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने गौरांग महाप्रभु के विषय। तो ये ज्ञान कहां से मिला भीष्म पितामह को, जनु मुनि की कृपा से, हमको समझ में आना चाहिए ये ज्ञान कहां से मिला, जनु मुनि ने ये ज्ञान दिया था भीष्म पितामह को। तो ये तो हो गई नवद्वीप की लीला। किस तरह से यदि हम ब्रज की बात करें कि ब्रज में जनु मुनि कहां रहते हैं, तो अभी हमको समझना चाहिए ब्रज में भी जनु मुनि का आश्रम है। मैं आपको एक नई जानकारी देता हूं, आप लोग को ये जब आप लोग अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जैसे कि भक्ति रत्नाकर, ब्रज भक्ति विलास, तब आप उसमें ये ब्रज की सीमा के विषय में जानेंगे कि ब्रज है कितना बड़ा, जिस ब्रज में हम लोग रह रहे हैं ये ब्रज कितना बड़ा है, इसमें आप लोग हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो भक्ति रत्नाकर के एक श्लोक में ये लिखते हैं, मथुरा मंडल सीमा यावावर हैते साकरी वटेश्वर पर्यंत शास्त्र मते, शास्त्रों का मत है कि यायावर प्रदेश से लेके सौकरी वटेश्वर तक, उत्तर से पूरब से सॉरी ये कौन सी जगह है, पश्चिम से पूरब, यस, उत्तर से दक्षिण। तो आप हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि पूरब से पश्चिम 84 कोस, कितना, 84 माइल्स, ओके, पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना, 84 कोस, समझ में आ गया, तभी तो 84 कोस बनेगा ना, मतलब इधर से इधर तक 84 कोस, इधर से इधर तक 84 कोस, ये ब्रज की सीमा है। इसे क्या बोलते हैं, सीमांत ब्रज। ब्रज कोई छोटे मोटे आकार में नहीं है जितना हम समझते हैं, ये शास्त्र बोलते हैं, ये ब्रज भक्ति विलास और भक्ति रत्नाकर का प्रमाण है और स्थानों का भी प्रमाण है कि उत्तर में दक्षिण में जो कामेवन है उसके आगे एक शहर है उसका नाम है पहाड़ी, पहाड़ी से लेकर अलीगढ़ तक अलीगढ़ थोड़ा दूर है ना यहाँ से, अलीगढ़ तक ब्रज की सीमा है, और इधर अयावर प्रदेश। अयावर प्रदेश आप अभी सोनग्राम या गुड़गांव के आसपास जो प्रदेश उसको कह सकते हैं, वहां से लेके वटेश्वर तक ब्रज इतना बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिए, इतना बड़ा ब्रज है। तो अब ये 84 कोस इधर से इधर, 84 कोस इधर से इधर, ठीक है, बीच में आप ऐसे गोला गाड़ो एक, ठीक है। तो जब बीच में आप गोला गाड़ोगे तो वो गोला भी 84 कोस हो जाता है, तो उसे कहते हैं नंद ब्रज। उसे क्या कहते हैं? नंद ब्रज, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, जिसके अंदर भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की। ये समझ में आया? एक है सीमांत पर ब्रज की सीमा। तो रूप गोस्वामी पाद मथुरा महात्मा ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि जैसे कि एक कमल होता है, कमल, और कमल की 8 पंखड़ियां हैं, कहीं कहीं जगह पे 100 पंखड़ियां भी लिखा है। तो 8 पंखड़ियों में से जो बीच का जो भाग है उसे कहते हैं नंद ब्रज, जिसमें हम लोग नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, बारहवन, भद्रवन इत्यादि, ये सब इसे क्या कहते हैं? नंद ब्रज। लेकिन जो पंखड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, वो ये सीमांत ब्रज है। तो उसी एक पेटल्स पे एक वन है आगरा से 27 किलोमीटर दूरी पे। आगरा का शास्त्र बोलता है अग्रवन, अग्रवन से 27 किलोमीटर दूरी पे एक योजन, मान लीजिए आप एक योजन की दूरी पे एक परिधि में एक पेटल्स के ऊपर एक जनु वन है। अगर आज आप वहां पे जाओगे तो उस शहर को बोलते हैं जाजऊ, जानू से क्या हो गया, जाजऊ हो गया अपभ्रंश करके। तो वहां पर जनु मुनि का आश्रम है। जनु मुनि नवदीप में तपस्या किए, नवदीप से तपस्या करके कहां आए? ब्रज में आए, और ब्रज में आके कहां तपस्या किए? जाजऊ, जनु वन जिसे बोलते हैं। और वहां पे भगवान कृष्ण का ध्यान किए, भगवान की लीलाओं का ध्यान किए, और भगवान की लीलाओं का ध्यान किए तो गंगा देवी यहां पे भी आई। अपने पिता को छोड़ती नहीं गंगा देवी, इतनी प्रिय पुत्री है जनु मुनि की। तो गंगा देवी आके प्रकट हुई और बोले पिताजी आप मुझे वहां छोड़ के आ गए? तो बोले नहीं, ये ब्रज प्रदेश है और नवदीप और ब्रज में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों, इसलिए चाहे मैं यहां रहूं या वहां रहूं बात बराबर है। तो गंगा मैया एक स्रोत के रूप में प्रकट हुई, बोला मुझसे कभी भी आपको कुछ प्यास लगे स्नान तो आप मेरे जल में स्नान करें। तो अगर आप उस जगह पे जाओगे जाजऊ में, जहां पे जनु वन जिसे बोलते हैं, तो आज भी गंगा जी उधर विद्यमान है, सोचिए। तो ये ब्रज इतना बड़ा है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये ब्रज है। तो जो कोई व्यक्ति ब्रज में और नवदीप धाम में अंतर देखता है तो वो व्यक्ति अपराधी है। अपराधी क्यों है? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, इसलिए नवदीप और वृंदावन इनमें भेद ना मानना, कोई भेद नहीं मानना चाहिए। और जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक हम अपने आप को ब्रजवासी नहीं कह सकते। हम लोग वैष्णव परंपरा में आए हैं और वैष्णव परंपरा में आके हम भजन कर रहे हैं गुरु के द्वारा दीक्षित होके, लेकिन ब्रज और नवद्वीप पे भेद ना देखिया ही वो ब्रजवासी, तभी आप ब्रजवासी बनेंगे, नहीं तो ये संभव नहीं है। केवल यहाँ पे आने मात्र से और अपने मनगढ़ंत कुछ करने से ब्रजवासी नहीं बन सकते आप लोग, याद रखिए इस चीज को। ये शास्त्र, ये आचार्यों का कथन है, जब तक कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम की महिमा को नहीं समझेगा तब तक वो व्यक्ति ब्रज की महिमा को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए वैष्णव शास्त्रों में नवद्वीप धाम की महिमा का बहुत वर्णन हुआ है, नवदीप धाम की महिमा का बहुत वर्णन हुआ है। जिस तरह से सारे तीर्थ यहाँ निवास करते हैं उसी तरह से नवदीप धाम में भी सारे तीर्थ निवास करते हैं। तो नवदीप में 9 द्वीप हैं, जिसमें अलग अलग द्वीप अलग अलग जगहों का प्रतीक है, सूचक है। जैसे कि प्रसिद्ध अंतरद्वीप जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, जहां पे हमारा मंदिर है अंतरद्वीप में, जहां पे मायापुर चंद्रद्वीप मंदिर बन रहा है अभी, तो वो मंदिर जहां पे उसे क्या कहते हैं? अंतरद्वीप। और ये अंतरद्वीप गोकुल और महावन से अभिन्न है। कोई व्यक्ति अगर गोकुल महावन नहीं गया है लेकिन वो अंतरद्वीप जाता है बात बराबर है, समझ में आया। अंतरद्वीप के बाद सीमंत द्वीप आता है, सीमंत द्वीप को कहते हैं ये तालवन है। क्या है ये? तालवन है सीमंत द्वीप। गोद्रम द्वीप नंदग्राम है, ऐसे। तो उसी तरह से जनुद्वीप, ये जो जनुद्वीप की हम बात कर रहे हैं, जनु मुनि की बात कर रहे हैं, जनुद्वीप क्या है? भद्रवन। क्या है? भद्रवन। 12 वनों में से एक जो प्रसिद्ध वन है भद्रवन, वो जनुद्वीप है, जनु मुनि का जहां पे आश्रम है। तो हम लोग ये झनु वन जो ब्रज में झनु झनु मुनि का आश्रम है उसका प्रणाम मंत्र यहाँ पे लिखा गया है ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ में। तो हम तो नहीं जा सकते वहां पे अभी, कभी हम ट्रिप बनाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। हम लोग बीच बीच में सब लोगों को लेके जाते रहते हैं। कल भी हमने बहुत सारे स्थानों के दर्शन किए वरिष्ठ वैष्णवों के सानिध्य में, आदरणीय दीनबंधु प्रभु जी और हिजोलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज के साथ में हम लोग कल बहुत सारे जगहों का भ्रमण किए। जैसे कि हमने कल प्रसिद्ध डेटीज कृष्ण बलराम का दर्शन किया। कृष्ण बलराम विष्णु स्वामी के द्वारा सेवित विग्रह है वृंदावन के पास मेराल जो गांव है। कई भक्तों को नहीं पता है क्योंकि भक्तगण जब तक भ्रमण नहीं करेंगे तब तक कैसे आप लोग को समझ में आएगा। तो जब भी हमारे मंदिर का परिक्रमाएं होती हैं तो आप लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और तभी आप इसको समझ सकते हैं। एक आचार्य टीका में लिखते हैं कि ब्रज को समझना कैसे समझ सकते हैं ब्रज को, तो बोलते हैं ब्रज में एक जगह पर स्थिर नहीं रहना चाहिए। ब्रज मतलब क्या? एक जगह पर नहीं, ब्रज मतलब होता है चलना, चलना। ब्रज मतलब होता है चलना, दौड़ना, जाना आना, ये सब ब्रज मतलब है। ब्रज में आप सोचें कि हम थोड़ा ध्यान लगा लें एक ही जगह पर बैठ के, नहीं नहीं नहीं, ब्रज मतलब घूमो, आप दर्शन करो जाके, तभी आपको ये ब्रज समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ये आचार्य लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा अपने से, ये लिख रहे हैं। तो भगवद गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, सर्व धर्म प्रतिज्ञ मामेकम शरणम ब्रजम अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें जो पहली लाइन है सर्व धर्म प्रतिज्ञ मामेकम शरणम ब्रज, एक आचार्य बड़ा सुंदर टीका में लिखते कि ये ब्रज जो शब्द आया ना ब्रज, भगवान बोलते हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर दो, है ना, सारे धर्म जो भी तुमने बना रखे हैं, है ना, और सब को त्याग करके क्या करो, तो ब्रज में निवास करो। इसका मतलब ये है, ये अलग अलग आचार्य मतलब आचार्यों के जो भाव है वो प्रकट होते हैं। तो ब्रज का मतलब ये कि आप लोग क्या करो, मतलब मेरे घर में जाओ, मेरे धाम में निवास करो। और धाम में निवास करके चुपचाप बैठना है क्या? नहीं, आप घूमो। मेरी जो लीला स्थलियां हैं जहां जहां मैंने अनेक अनेक लीला की है उसमें घूमो। तो बोलते हैं कि भगवत गीता भक्ति की शुरुआत है और भक्ति में अगर पारंगत होना है तो आपको भागवत पढ़िए। तो ब्रज मतलब ब्रज का वर्णन कहां पे? श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में है, तो दसम स्कंद पढ़िए आप। और ब्रज में दसम स्कंद को पढ़ के भगवान की कृपा को लेके फिर आप प्रचार कीजिए, मतलब चेतन चरितामृत का अध्ययन कीजिए। दैट्स, तो ये है सिस्टमेटिक स्टडी। पहले भगवत गीता को पढ़ना है, भगवदगीता को पढ़ के भागवतम का अध्ययन करना है क्योंकि उसमें ब्रज है, ब्रज से कृपा लेनी है, और ब्रज से कृपा लेके क्या करना है? चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना है, मतलब प्रचार करना है, क्योंकि जो कृपा आप लोग ने ली है वो आपको दूसरे लोगों को भी देना है, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि झनु मुनि ब्रज में आए, झनु वन में, और वहां पे तपस्या की है। जब वहां पे तपस्या की तो बहुत सालों तक तपस्या किए, और जब भगवान श्री रामचंद्र भी उनको दर्शन देने के लिए गए झनु मुनि को, ऐसा वर्णन है, और बैकुंठ जगत से विमान आए उनको लेने के लिए, झनु मुनि की स्तुति गाए गए और स्तुति गा के झनु मुनि को सम्मान पूर्वक विमान में बिठाया गया। सारे देवी देवता उनकी स्तुति गान करने लगे, गंगा मैया भी प्रकट होकर अपने पिताजी को विदा किए, सोचिए। और बैकुंठ के विमान में बैठ के सबके सामने भगवान के धाम चले गए झनु मुनि, सोचिए। तो इसमें बोलते हैं देव गंधर्व सेवाए नाना द्रुमलतार्चिता विकलमसा मोक्षाए तप स्थल नमोस्तुते इति मंत्रम दशावृत्या नमस्कारम करोति यः ब्रह्मत्यादि निर्मुक्तो वैकुंठ माप्नुयात् गंगा पात समुद्भुता झन्नु तीर्थ नमोस्तुते सर्वकल्मस नासाय झन्नु कूप नमोस्तुते। तो ये हमने जो झनु मुनि का जो आश्रम है जाजव ग्राम में, वो हमने उस जगह को यहीं से प्रणाम किया। तो प्रणाम करने मात्र से ही हमको कृपा की प्राप्ति होगी। तो अभी मुझे बोला गया है कि हम थोड़ा प्रश्नों के लिए भी समय दें, तो अभी 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है। कई भक्तों ने बोला कि प्रभु जी आप प्रश्न के लिए कोई समय नहीं देते, बस कथा कथा कथा, तो कोई नहीं, आप लोग के पास समय है, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ, लक्ष्मी देवी पद्मावती नदी बनी, पद्मा नदी है जो, पद्मा नदी वो बनी, और एक अंश से लक्ष्मी देवी तुलसी जी हैं। ये जो तुलसी जो वृक्ष है, सरस्वती ने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, वृक्ष रूपा हो जाओ और नदी रूपा हो जाओ, तो भगवान विष्णु बोले कि तुम नदी रूप में पद्मा बनोगी और वृक्ष रूप में मेरी पत्नी तुलसी बनोगी, और थोड़ी समय के बाद तुम मेरे धाम में वापस आ जाओगे, ज्यादा विलंब नहीं हो क्योंकि तुम बहुत शांत हो और दोनों की तरह लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं हो। ये है। और कोई प्रश्न, ब्रज से संबंधित कोई प्रश्न किसी को मन में? हाँ बद्री,
जो
नहीं वो लीला अलग है,
वो भी लक्ष्मी है ना?
हाँ, वो भी लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी देवी ने देखा कि उनके उनके पति देव वैकुंठ जगत में नहीं है, वो संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी दर्शन करने के लिए आई, तो लक्ष्मी देवी ने देखा कि इतना धूप पड़ रहा है, इतना बारिश होता है, लेकिन फिर भी मेरे पति इतनी तपस्या कर रहे हैं। वैकुंठ जगत में तो भगवान बहुत आराम से रहते हैं, भगवान सोते रहते हैं, सो सो के भगवान सृष्टि चलाते हैं, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आई लक्ष्मी अपने पति को देखो तो पूरा तपस्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी एक पत्नी है और अपने पति की सेवा हर तरह से करना चाहती हैं, तो लक्ष्मी देवी ने क्या किया, एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, बद्री, बद्री वृक्ष का रूप धारण करके भगवान को छाया प्रदान किया। और इस रूप को किसने देखा? नारद मुनि ने देखा, तो नारद मुनि ने माता को और भगवान को प्रणाम किया, तब से भगवान का नाम क्या हो गया? बद्री नारायण, ये भगवान का नाम हो गया। यस प्रभु जी, माइक दीजिए।
हेलो प्रभु जी, एक बार अमोगिला प्रभु जी की क्लास चल रही थी ऑनलाइन यूट्यूब पे उनका माई आश्रय पे, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि
किस अष्टक पे?
माई आश्रय पे, माई आश्रय पे
मुझे लगा कोई अष्टक पे चल रही
नहीं, 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 नहीं। तो उनका उन्होंने कहा था कि जो ब्रज पुल जो बनाया था राम भगवान के समय पे, उस समय वो ब्रजवासियों ने बनाया था, जो पुल बनाया था राम सेतु।
अच्छा,
तो एक हनुमान जी की उनकी एक वीडियो है 13 मिनट्स की।
प्रश्न क्या है वो बताइए।
तो प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों ने बनाया था इसलिए, जो पुल बनाया था इसलिए ब्रजवासी यहाँ पे लोगों को कहा जाता है।
अरे वो एक व्यंग है, वो हम लोग बोलते ना ब्रिज। अच्छा। है ना, तो बोलते कहाँ रहते, बोले हम तो ब्रिज के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो ब्रजवासी बन गए। वो एक व्यंग है,
ये पूछ रहा था।
ब्रजवासी कभी भी ब्रज छोड़ के नहीं जाते, ऐसे बोलते हैं कि समझ में आ गया मुझे आपका प्रश्न।
जी जी, ये इंग्लिश का वर्ड था जो ब्रिज में कह रहा, वहां पे जब कैसा था ये? थैंक यू।
एक्चुअली ब्रिज के कई सारे अर्थ होते हैं। प्रश्न है, अरे माधव का प्रश्न है, इसको इनको दीजिए, खड़े होके पूछिए आप, थोड़ा सबको दिखाइए भी। ये बहुत बड़े भागवत कथाकार है माधव, आप लोग को पता होगा, बहुत ज्ञान है इनको। अभी इनका प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग। हाँ, खोल लीजिए।
प्रोजी, असली ब्रजवासी कौन है जो ब्रज में बास करता है और जिसका जन्म हुआ है?
अच्छा, इसके लिए तो आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, असली ब्रजवासी कौन है। मैं बैठ जाइए, समझ में आ गया। ब्रज में शिला रूप, जब हम भक्ति, इसके लिए हमें भक्ति समर सिंधु का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, आप लोग फिर से सुनिए, आप हम लोग सुनते हैं, सुनने से कुछ क्लियर होता है, लेकिन जब हम आचार्यों के द्वारा ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब पूरा पूरा क्लियर हो जाता है। हमने सुना, थोड़ा क्लियर होगा, लेकिन हमारे शिला प्रपात जी ने हमें सब कुछ देखे गए हैं, हमको कुछ अलग कहीं जाना भी नहीं है, समझ रहे ना। अब सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, अगर मेरी माने आप लोग, मतलब मैं अपनी अपनी अच्छा अनुसार बता रहा हूं, मुझे सबसे अच्छा ग्रंथ हमारे इस्कॉन संस्था में जो लगा वो कौन सा ग्रंथ है? भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा ग्रंथ हमने कभी अपनी लाइफ में ना सुना ना पढ़ा, उसमें हर एक चीज क्लियर हो जाती है। इनका प्रश्न है कि कौन ब्रजवासी है, तो उसमें वर्णन है कि ब्रज में जो चिंतन भी करता है, बाहर जैसे आप रह रहे हो और ब्रज का चिंतन कर रहे हो, आप ब्रजवासी हो, ब्रज में आप एक दिन आए, ब्रजवासी हो, ब्रज के पार से आप जा रहे हो, 9 प्रकार से ब्रजवास का वर्णन किया है, मतलब ब्रज में जो वास करते हो ब्रजवासी है, तो 9 प्रकार से ब्रज का वास का वर्णन किया है। मुझे वो पर्टिकुलर श्लोक याद नहीं, प्रभु जी को माइक दे दो जरा, वो बताएंगे। दशरथी स्वरूप को याद है ना वो श्लोक, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, बताइए बताइए, खड़े होके बताइए प्लीज, सुनो माधव ध्यान से, खड़े होकर बताइए, सबको सुनाई देगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जो है 9 प्रकार के ब्रज का जो है वास का जो है वर्णन करते हैं,
सुनिए ध्यान पूर्वक।
पहला है श्रवणम, अगर हम ब्रज के वासी में दूर से भी सुन रहे हैं श्रवण, तो भी ब्रज में जो है वास का फल मिल जाता है। और उससे श्रेष्ठ है कीर्तनम, कि जैसे वृंदावन बिहारी प्रभु जी ने अभी ब्रज लीला बताई, अब उस लीला को आपने किसी से कह दिया तो आपको उससे भी ज्यादा लाभ मिलेगा।
पहला है श्रवण ब्रज के विषय में सुनना, दूसरा है ब्रज के विषय में बोलना, ओके, तीसरा
है स्मरण
ब्रज के बारे में सोचना, ये तीसरा भाष है ब्रज का। चौथा
फिर परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि चौथा जो प्रकार है वो है प्रेक्षा, मतलब ब्रज को दूर से ही देखना।
ब्रज को दूर से देखना मतलब आप कहीं दूर से जा रहे हो तो ब्रज को प्रणाम कर लेना, ब्रज वृंदावन ऐसे करके, ये चौथा निवास है ब्रज का।
और प्रेक्षिता एक और है कि जैसे कि कोई ट्रेन से भी जा रहा है और हाँ वहां से भी प्रणाम कर लेता, ठीक है।
आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, आप ना इधर तो वृंदावन है तो ऐसे प्रणाम कर लिया।
पांच प्रकार के
ये भी ब्रज का वास है।
तो अब जो है पांच प्रकार के जो है ये मानसिक रूप से जो है वास हुआ, ब्रज में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप चिंतन करो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज में अप्रत्यक्ष रूप से वास करना, पांच प्रकार का आपने सुन लिया भक्त, आप प्रत्यक्ष रूप से बताइए।
प्रत्यक्ष है कि ब्रज में आना,
ब्रज में आना
तो गता ब्रज में आए, लेकिन ब्रज में सब लोग आते हैं लेकिन ब्रज में किस तरह से आना चाहिए उनको पता नहीं है। तो चौथा पांचवा प्रकार बताते हैं, छठा प्रकार स्पर्श, ब्रज में आना चाहिए तो यहाँ के स्पर्श करना चाहिए। नारायण ब्रज भूमि को ना नवाबे मात, यहाँ आप स्वयं गोपी बने, स्वयं गोपेश्वर नाम, तो यहाँ स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद है आश्रिता, बहुत सारे लोग हमारे ब्रज में आके आश्रित तो हो जाते हैं, इस्कॉन के आ जाते हैं, मंगला आरती वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन जो नौवां प्रकार है वो बताते हैं रूप गोस्वामी की है सेविता, ब्रज में आके कुछ ना कुछ सेवा लेनी चाहिए, पर्टिकुलर मंदिर में माला बनाने की या कोई भी सेवा जो है जरूर जो है निश्चित रूप से परिक्रमा लगाने की या कोई भी सेवा जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रजवास का जो है पूर्ण फल जो है मिलता है।
धन्यवाद। तो आप लोग ने सुना नौ प्रकार से ब्रजवास होता है, कहां वर्णन है भक्ति रसामर सिंधु में। तो जब हम लोग ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे निश्चित हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, निश्चित। समझ में आया? और कोई प्रश्न? यस माता जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बता रहे थे जैसे धाम में जब भगवान अपने द्रव्य रूप में प्रवर्तित हो गए थे उस समय बिरजा नदी के रूप में या गंगा के रूप में?
गंगा के रूप में। बिरजा नदी तो गोपी, वो अलग स्टोरी है। गंगा, गंगा जल, भगवान का शरीर ही गंगा जल है। मैंने बताया ना तीन, एक तो गंगा जल जो कारण सागर से आया, दूसरा ब्रह्मा जी ने पानी रख लिया था अपने कमंडली में, तीसरा भगवान स्वयं। जैसे कि चेतन चरितामृत में ये श्लोक है, भागवत तुलसी गंगाए भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण ही चार सने। भगवान चार रूप में प्रकट हैं, भागवत के रूप में, तुलसी के रूप में, गंगा जी के रूप में और भक्तों के रूप में। चतुर्थ विग्रह कृष्ण ही चार ही सने, चार रूप में भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। समझ में आपको? ओके, यस प्रभु जी। ये माता जी को पीछे, माता जी उनको दीजिए। हाँ, आप क्यों दे रहे हैं?
हरी शो जी, ये थोड़ा विस्मरण हो गया मुझे, जब कृष्ण की उन्होंने स्तुति की,
किन्होंने
वो मुझे याद नहीं, आपने बताया तो वो मुझे पूछना है उसे, किन्होंने स्तुति की जब वो कृष्ण जो है द्रवीभूत हुए और जल?
शिव जी ने।
हाँ, ये
शिव जी जब भजन गाते है ना तो भगवान है ना उनका शरीर द्रवित हो जाता है।
हाँ, वो शिवजी भूल गई मैं। हाँ, किसने की थी? ठीक, हरे कृष्ण।
यस प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ने जो निर्देश दिया तंत्र शास्त्र रचना करने की, तंत्र शास्त्र अपने जो
तंत्र शास्त्र
तो ये तंत्र शास्त्र क्या हमको ये अध्ययन करना चाहिए? और तंत्र
नहीं, हमको इतना जरूरत नहीं है, हमको शिला प्रपा जी ने जो ग्रंथ दिए है वो काफी है, उसमें सब कुछ है, जरूरत नहीं है।
क्या तंत्र शास्त्रों से हमें सिद्धि प्राप्ति हो सकता है?
नहीं, प्रेम तंत्र, सुनिए हो गया आपका प्रश्न, सुनिए। शास्त्र बहुत सारे हैं, इतने शास्त्र हैं कि आपका एक लाइफ छोड़ो दूसरा लाइफ भी खत्म हो जाएगा, बस शास्त्र पूरे नहीं होंगे। समझ में आया ना? तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, हमको है ना सार दिया है बढ़िया से, ठीक है ना? तो सार क्या है? भगवद गीता, श्रीमद भागवत, चेतन चरितामृत, तीनों को भी आप पढ़ लिए ना आपका जीवन धन्य हो गया, सब कुछ इनमें ही है। समझ में? अगर ऐसा होता तो प्रपा जी बोल के जाते ना, मैं नहीं आपको ये भी पढ़ना, प्रपा जी ने नहीं बोला ये सब। समझ में है ना? तो जो हमारे आचार्य बोल रहे हैं वही हमें पढ़ना है और वही प्रपा जी देखे गए हमें। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवत हमको अच्छे से पढ़ना है, और जब ये सब अध्ययन हो जाए तो चेतन चरितामृत पढ़ना है। सबसे पहले हम न्यू भक्तों को चाहिए, जो हम लोग हम सब न्यू भक्त ही हैं, तो प्रभुपाद जी के छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ें। छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं ना, कृष्ण की ओर, हरे कृष्णा चुनौती, और हो गया प्रकृति के नियम, ये सब। उसके बाद ये भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता के बाद भागवत पढ़ो, भागवत के बाद चेतन चरितमृत पढ़ो। उतना भी पढ़ लिया है ना, हम लोग बहुत धन्य हैं, बहुत हमारा भाग्य अच्छा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रसाद का टाइम हो गया। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।